है बाईस टू अट्ठानवे का प्रातः क्लास हेडिंग दिया है मीठे मीठे बच्चे श्री श्री की शेष मत पर चलने से ही तुम नरसिंह श्री नारायण बनेंगे। इस निश्चय में ही विजय है, इस निश्चय में विजय है। सिर्फ श्रेष्ठ की मत पर चलने से नहीं, श्रेष्ठ माने देवताएं, कोई देवता तुमको लक्ष्मी नारायण नहीं बना सकता। जो श्रेष्ठ देवताएं हैं उन देवताओं को भी जो श्रेष्ठ बनाने वाला है वो है परमपिता परमात्मा शिव। जो न देवता बनता है न मनुष्य बनता है न राक्षस बनता है। वो देवताओं से भी श्रेष्ठ है, वो ही तुमको नरसिंह नारायण और नारी से लक्ष्मी बना सकता है। इस निश्चय में ही विजय है। बोला बच्चों का मुखड़ा देखना पड़ता है, पड़ता है, पड़ता है माना बाबा की मजबूरी है क्या कि जो बच्चे श्रेष्ठ की श्रेष्ठ जो श्रेष्ठ है सुप्रीम सोल अजन्मा अकर्ता अभोक्ता उस ऊंच से ऊंच की मत पर जो नहीं भी चलते हैं उनका मुखड़ा भी बाप को आकर इस सृष्टि पर देखना पड़ता है। किसकी मत पर चलते हैं? श्रेष्ठ की श्रेष्ठ जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है उसकी मत पर नहीं चलते। किसकी मत पर चलते हैं? है जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ की मत पर नहीं चलते हैं देवता बनने वाली आत्माओं की मत पर चलने लग पड़ते हैं या देवताओं से नीची कैटेगरी जो मनुष्यों की है जो मनुष्य द्वापर युग से आकर की सृष्टि पर पार्ट बजाते हैं मनुष्य आत्माएं उनकी मत पर चलने लग पड़ते हैं। उन्हें भी छोड़ो, कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो कलयुग में अंत में आकर के राक्षसी पार्ट बजाने वाली है उनकी भी मत पर चलने लग पड़ते हैं। परंतु सुप्रीम सोल बाप की तो सब मनुष्य आत्माएं बच्चे हैं, तो बच्चे होने के कारण जो बाप की मत पर नहीं चलते हैं उनका भी मुखड़ा देखना पड़ता है। ये बाप की सुप्रीम सोल बाप जो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है उसकी ये मजबूरी है। क्या मजबूरी है? कि जो सुप्रीम सोल बाप की मत पर नहीं चलते हैं उनका भी मुखड़ा देख रहा है। नहीं तो लौकिक दुनिया में लौकिक बाप क्या करता है? जो लौकिक बाप होता है वो देखता है कि ये बच्चा मेरी मत नहीं मानता है, तो उस बच्चे से बात करना बंद कर देगा, उस बच्चे को देखना बंद कर देगा। लेकिन इस सुप्रीम सोल बाप की ये मजबूरी है कि जो बच्चे मत पर नहीं चलते हैं, बाप की श्रीमत को फॉलो नहीं भी करते हैं, उनका भी चेहरा देखना पड़ता है। क्या मजबूर है? माना सुप्रीम सोल बाप भी सृष्टि पर आकर ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है कि उसको जो भी मनुष्य सृष्टि की 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, उन सबका उद्धार करके उसको वापस ले जाना। इसलिए जो भी बच्चे सामने आते हैं, उन सबका मुखड़ा देखना पड़ता है। ये कोई साधु संत नहीं है। क्या जो बच्चों का आकर के मुखड़ा देख रहा है, ऊंच से ऊंच परम धाम से आता है, ऊंच से ऊंच बाप है, वो कोई साधु संत नहीं है। माना साधु माना साधना करने वाला, उसे साधना करने की दरकार नहीं है। साधना कौन करता है? साधु सन्यासी वो साधना करते हैं। साधना करती है इंद्रियों को साधना, जिनकी इंद्रियां उनके कंट्रोल से बाहर है, वो अपनी इंद्रियों को साधने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। वो तो सुप्रीम सोल है, जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं है, उसको इंद्रियों को कंट्रोल करने की बात है ही नहीं। तो ये कोई साधु संत नहीं है। कौन? जो हम बच्चों को इस सृष्टि पर आकर के पढ़ा रहा है, वो कोई साधु संत नहीं है। बाप दादा और बच्चे हैं, वो हमारा बाप है सुप्रीम सोल बाप, और दादा अर्थात जिसमें वो प्रवेश करता है, मनुष्य आत्माओं में जो हीरो पाठधारी है, माना मनुष्य आत्माएं जो भाई भाई हैं, उन भाई भाई आत्माओं में जो सबका दादा है, दादा माने ग्रैंड ब्रदर, जो बड़ा भाई है, आत्माओं के बीच में जो बड़ा भाई है, उस आत्म पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी में प्रवेश करता है। तो एक प्रवेश करने वाला सुप्रीम सोल बाप और एक जिसमें प्रवेश करता है वो दादा। तो बाप दादा और यहाँ बच्चे हैं, यहाँ कोई गुरु और शिष्य का संबंध नहीं है। साधु संत पढ़ाने वाला नहीं है। इसको कहा जाता है ईश्वरीय कुटुंब, ईश्वरीय परिवार। क्या कहा जाता है? ये ईश्वर का कुटुंब है, ईश्वर का परिवार है। कुटुंब में क्या होता है और परिवार में क्या होता है? कुटुंब होता है छोटा सा, माँ बाप और बच्चे, बस हो गया कुटुंब। और होता है ईश्वरीय परिवार, परिवार होता है थोड़ा बड़ा विस्तार, जहाँ माँ बाप भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बच्चियां भी होती हैं, और भी नाते रिश्तेदार आकर के इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो भी परिवार में गिन लिए जाते हैं। ईश्वरीय परिवार या ईश्वरीय कुटुंब है ईश्वर यानी परम पिता, जिनका बच्चा है ये ब्रह्मा। ईश्वर माना परम पिता, परम माना जिसकी सुप्रीमेसी है पिताओं में, जो भी गॉड फादर है वो सबसे उच्च से उच्च पिता है, उससे कोई ऊंचा पिता नहीं होता। जो धर्म पिता हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये भी पिता हैं। ये अपने अपने धर्म के पिता हैं, महान पिताएं कहे जाते हैं, ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं। उन धर्म पिताओं का भी पिता है एडम, आदम या प्रजापिता। जो भी मनुष्य शक्ति के अलग अलग धर्मों के ग्रंथ फादर्स हैं, महान पिताएं हैं, ग्रेट फादर्स, ग्रैंड फादर नहीं, ग्रेट फादर्स हैं, उनके भी कोई पिता है। कौन पिता है वो? एडम, आदम या प्रजापिता। हिंदुओं में उसको क्या कहते हैं? प्रजापति। वास्तव में है प्रजापिता, सारी मनुष्य शक्ति का पिता। उस प्रजापिता का भी कोई बाप है, प्रजापिता का बाप है सुप्रीम सूर्य। वो सुप्रीम सोल गॉड फादर शिव, उसकी हर धर्म में मान्यता है। कैसे? हिंदुओं में तो उस निराकार की यादगार शिवलिंग बनाते ही है। वो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु, उस बिंदु का बड़ा आकार शिवलिंग बनाते हैं। मुसलमानों में भी उनका जो काबा है मक्का मदीना में, वहां एक गोल काला पत्थर दीवार में जुड़ा हुआ है, उसका नाम है संगे असवद। जब तक उसका चुंबन नहीं करते, सिजदा नहीं करते, तब तक उनकी हज पूरी नहीं मानी जाती। तो मुसलमान लोग भी उस निराकार के प्रतीक को मानते हैं, कहते भी हैं। इस गॉड फादर के बारे में, अल्लाह ताला के बारे में, अल्लाह माने ऊंचते ऊंच, उसके बारे में कहते भी हैं कि वो नूर है। क्या है? नूर है, रूह है, रोशनी है। कुरान में लिखा है वो एक सितारा है। क्या है? स्टार है, स्टार की मुआफिक। क्रिश्चियन लोग कहते हैं वो लाइट है, गॉड इज लाइट। बौद्धी लोग भी स्टूल के ऊपर एक बटिया रखते हैं और उस पर त्राटक करते हुए देखे जाते हैं, वो भी निराकार के स्वरूप को मानते हैं। माने इस दुनिया में जो भी धर्म संप्रदाय हैं वो सब निराकार के स्वरूप को मानते हैं। निराकार क्यों कहा? निराकार इसलिए कहा कि वो जब इस सृष्टि पर आता है तो भी निराकारी स्टेज में रहता है, देवान में नहीं आता। वो कर्मेंद्रियों के भान में नहीं आता। आंख, नाक, कान, भुजाएं, इन कर्मेंद्रियों के भान में, बंधन में नहीं आता। उन कर्मेंद्रियों को साधने की, साधना करने की उसको दरकार नहीं पड़ती। तो वो निराकार सुप्रीम सोल प्रजापिता का भी बाप है, धर्म पिताओं का भी बाप है, और सामान्य जन जो है मनुष्यात्मा उन सबका भी 500-700 करोड़ जो भी मनुष्यात्मा है सबका बाप है। सिर्फ मनुष्यात्माओं का ही बाप नहीं है क्या? सिर्फ मनुष्यात्माओं का ही बाप नहीं है, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी जो भी है सबकी बिंदु बिंदु आत्माएं हैं, उन बिंदु बिंदु आत्माओं का वो बाप है। इसलिए बताया ईश्वर यानी परमपिता, परमपिता सुप्रीम फादर जिनका बच्चा है ये ब्रह्मा, फिर तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारी है। क्या उसका पहला बच्चा कौन? प्रजापिता ब्रह्मा। पहला बच्चा है प्रजापिता ब्रह्मा, उसके बच्चे हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, उनको कह दो दूसरा नाम ब्राह्मण और ब्राह्मणीय। शास्त्र में भी ये बात बताई है कि ब्रह्मा ने जब सृष्टि रची तो मुख में से क्या निकले? पहले पहले मुख में से ब्राह्मण निकले। क्या निकले? ब्राह्मण निकले। तो ब्राह्मण निकले तो ब्राह्मणिया भी निकली। ये मनुष्य शक्ति की शुरुआत हुई। आप कहेंगे वो तो पहले की बात है, अभी की बात थोड़ी है, लेकिन जो पहले हो चुका है वही फिर रिपीट भी होता है। पहले भी शक्ति रची गई थी तब भी ये बात रिपीट हुई थी, ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची गई थी। अब पहले रची गई है तो फिर रिपीट हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो वो सुप्रीम सोल बाप हर कल्प कल्प में सृष्टि पर आता है और नई सृष्टि की रचना ब्रह्मा के द्वारा करता है। ब्रह्मा कोई ऊपर से नहीं आ जाता। इस मनुष्य शक्ति के ही मनुष्यों में से कोई ऐसी विशेष आत्मा है जो हीरो पार्टधारी है, होती है, उस हीरो पार्टधारी में वो सुप्रीम सोल आकर के प्रवेश करता है। जैसे गीता में एक शब्द आया है प्रवेश तुम, क्या जो संस्कृत की गीता है मनुष्यों की बनाई हुई उसमें भी एक शब्द है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। जैसे भूत प्रेत आत्मा प्रवेश कर जाती है वैसे वो सुप्रीम सोल भी प्रवेश करता है। तो वो उस प्रवेश करके जिसमें पहले पहले प्रवेश करता है उसका नाम रख देता है प्रजापिता ब्रह्मा। उस प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से जो कुछ भी बोल निकलता है, है? उस बोल को जो भी मनुष्य आत्मा कलयुग के अंत में सृष्टि पर सुनती है वो उसके बच्चे बन जाते हैं मुखवंशावली। क्या मुखवंशावली? नहीं, पेट से पैदा होने वाले नहीं, मुख वंशावली ब्राह्मण और ब्राह्मणीय। तो वो जो मुख वंशावली ब्राह्मण और ब्राह्मणिया जो ज्ञान सुन करके, मुख से सुनाया हुआ ज्ञान सुन करके अपने जीवन के संस्कारों को पलट देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, अपने जीवन के जो बुरे संस्कार हैं उनको चेंज कर देते हैं, वो ही फिर ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहे जाते हैं। जब तक संस्कारों को चेंज नहीं किया है, पलट नहीं दिया है, तब तक वास्तव में वो सच्चे सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं भी नहीं। हाफ कास्ट ब्राह्मण और हाफ कास्ट ब्राह्मणी कही जा सकती है। इसलिए शास्त्रों में दो प्रकार के ब्राह्मण दिखाए गए हैं, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ। ये कैसे ब्राह्मण थे? आसुरी ब्राह्मण थे या देवताई ब्राह्मण थे? आसुरी ब्राह्मण थे, वो भी ब्राह्मण थे। जिनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है, और दूसरी तरफ गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण भी थे। तो ब्रह्मा के द्वारा जो शक्ति रची जाती है उसमें दो प्रकार के ब्राह्मण तैयार होते हैं, आसुरी ब्राह्मण और दैवत्व प्राप्त करने वाले ब्राह्मण। तो प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया? ब्रह्मा के द्वारा माउंट आबू में ब्राह्मणों की शक्ति रची गई, जो आज इस सारे संसार में हर देश देश में ये शक्ति फैली हुई है। कौन सी शक्ति? ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण बनाई हुई जो शक्ति है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयों में, जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड फैले हुए हैं। क्या सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं, सारी दुनिया में वो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय खुल गए हैं, शाखाएं खुल गई हैं। उनमें वो ब्राह्मण ब्राह्मणिया पढ़ाई तो पढ़ रहे हैं, राजयोग तो सीख रहे हैं, लेकिन उसमें दो प्रकार के ब्राह्मण। कौन कौन से ब्राह्मण? आसुरी ब्राह्मण और शिष्य ब्राह्मण। श्रेष्ठ ब्राह्मणों की संख्या बहुत थोड़ी है। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है वो श्रेष्ठ ब्राह्मण एडवांस में आगे आगे जाते हैं। क्या? ज्ञान में भी आगे आगे जाते हैं। जो शास्त्रों में लिखा है ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। रामायण में क्या लिखा है? ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। भक्त भी प्यारे हैं, वैरागी माना सन्यासी भी प्यारे हैं। ज्ञान भक्ति वैराग्य तीन की त्रिवेणी कही जाती है ना, तो वैरागी माना सन्यासी भी प्यारे हैं, नारद और मीरा जैसे भक्त भी प्यारे हैं, लेकिन विशेष प्यारे कौन है? ज्ञानी तू आत्मा ज्ञानी मुझे विशेष प्यारे। तो परमात्मा बाप के जो ब्राह्मण ब्राह्मणिया ब्रह्मा से पैदा होते हैं मुख वंशावली, उनमें जो ज्ञान में बहुत सीखे जाते हैं, क्या ज्ञान की गहराइयों को बहुत गहराई से पकड़ते हैं, वो ज्ञानी तू आत्मा उस परम ब्रह्म परमेश्वर परम पिता को विशेष रूप से प्यारे, वो एडवांस में आगे आगे जाते हैं। ज्ञान में भी आगे जाते हैं, याद में भी, योग में भी आगे आगे जाते हैं, धारणा में भी लास्ट में आगे बढ़ जाते हैं, और पवित्रता में भी आगे बढ़ते हैं। तो ज्ञान योग धारणा और सेवा इन चार सब्जेक्ट्स में जो ईश्वर के द्वारा पढ़ाए हुए चार सब्जेक्ट्स हैं उनमें जो बहुत पीछे चले जाते हैं वो है एडवांस पार्टी। एडवांस पार्टी जिनको वो आतकाई ब्राह्मण नाम देते हैं शंकर पार्टी। क्या नाम देते हैं? शंकर पार्टी। ब्रह्मा कुमार तो सारी दुनिया है, देवताओं ने भी ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिए और ज्यादातर असुरों ने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किए। आसुरी संस्कार वाले जो राक्षस संप्रदाय हैं उन्होंने तपस्या करके ब्रह्मा से ज्यादा वरदान प्राप्त किए, तो वो भी ब्रह्मा की बच्चे। अम्मा की गोद में अच्छा बच्चा भी पलता है और अम्मा की गोद में बुरा आसुरी बच्चा भी पलता है। माँ जो है वो अपने किसी बच्चे को गोद से अलग नहीं करना चाहती। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में राक्षस भी पल रहे हैं और दैवत्व वाली आत्माएं भी पल रही हैं। उनमें से जो दैवत्व वाली सूर्यवंशी बच्चे हैं, क्यों सूर्यवंशी ही क्यों? क्योंकि ब्रह्मा के मुख से जो बच्चे पैदा होते हैं ज्ञान सुनकर के अपने संस्कारों को सुधारने वाले, उन ब्राह्मण बच्चों में सारी दुनिया में से हर धर्म की आत्माओं में से शेष आत्माओं को चुना जाता है। क्या आज 60-65 साल हो चुके हैं इस संस्था को चलते हुए, दुनिया के हर धर्म संप्रदाय से शेष से शेष ऊंचे किस्म की आत्माओं को चुना जा रहा है और ब्रह्मा कुमार कुमारी बन रहे हैं। लेकिन उनमें दो प्रकार के हैं, आसुरी और श्रेष्ठ ब्राह्मण। तो जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं वो भी ईश्वरीय फैमिली है, ईश्वर के सब बच्चे हैं। जो भ्रष्ट कर्म करने वाले हैं वो भी ईश्वरीय फैमिली है। तो तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, वो है वर्ल्ड का फादर। क्या वो है? वर्ल्ड का फादर, सारी दुनिया का पिता। यूं सारी दुनिया के तीन फादर होते हैं। क्या हमारे आपके और जो दुनिया में मनुष्य हैं उन सब के तीन फादर्स होते हैं। एक फादर है लौकिक, जिसने ये शरीर को जन्म दिया, वो सबको होता है। शरीर को जन्म देने वाला पिता लौकिक पिता। दूसरा होता है अलौकिक पिता, माने जो सृष्टि रची गई मनुष्य की सृष्टि, उस मनुष्य सृष्टि को रचने में जिसने मुख के द्वारा पैदाइश की, ज्ञान की पैदाइश, वो ज्ञान की पैदाइश देने वाला प्रजापिता ब्रह्मा, वो हुआ अलौकिक पिता। और तीसरा है पारलौकिक पिता, जो इस सृष्टि पर आता तो है लेकिन सिर्फ एक बार आता है, एक जन्म लेता है, वो भी प्रवेश करके जन्म लेता है, गर्भ से जन्म नहीं लेता। वो सुप्रीम सोल गॉड फादर, जो बिंदु बिंदु आत्माओं का पिता है, शरीर का पिता नहीं है, वो तीसरा और सबसे ऊंचा। ये तीन पिताएं हर मनुष्य आत्मा को होते हैं। तब जब परमात्मा इस सृष्टि पर आता है तब, वैसे जब नहीं आता है तो सिर्फ एक फादर होता है। कौन सा? लौकिक पिता। इस शरीर को जन्म देने वाला जन्म जन्मांतर हमारा लौकिक पिता हुआ, लेकिन जब सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर आता है, क्या जब वो सुप्रीम सोल उसी से ऊंचा बाप अजन्मा करता निरंजन निराकार जिसको कहते हैं वो सृष्टि पर आता है तो उस समय तीन बाप हो जाते हैं। वो आता है तो किसी में प्रवेश करता है, जिसमें प्रवेश करता है वो हुआ प्रजापिता ब्रह्मा, सारी मनुष्य सृष्टि का पिता एडम या आदम आदिदेव, जैनियों में कहते हैं आदिनाथ। नाम कितने समान है, सेम नेम्स, आदिदेव आदिनाथ आदम, अंग्रेजों में एडम। वो सारी मनुष्य सृष्टि का पिता प्रजापिता अलौकिक बाप, तो लौकिक बाप अलौकिक बाप और पारलौकिक बाप। तो एक है निराकार बाप, दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा, तीसरा फिर है लौकिक बाप। परंतु ये किसी को भी पता नहीं है किस बात का कि मनुष्य आत्माओं को तीन बाप होते हैं। क्या ये तीन बाप की पहचान, वो सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर जब आता है तब हम बच्चों को ये बाप की पहचान देता है। क्या पहचान देता है, कि इस मनुष्य सृष्टि पर जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उन सबको तीन बाप है। ये किसी को पता पहले नहीं होता। पित्र आदि भी बनाते हैं लेकिन जान पित्र आदि बनाते हैं किसके, प्रजापिता के भी चित्र बनाते हैं, प्रजापति दाढ़ी मूछ दिखा दी है बकरे की, बकरे का मुख दिखा दिया है प्रजापिता को, तो चित्र तो बनाते हैं लेकिन जानते नहीं है कि वो कब आया था। उनसे पूछो कि वो प्रजापिता कब आया तो कहते लाखों वर्ष हुए, करोड़ों वर्ष हुए, मैंने सही पता किसी को नहीं है। सेवका भी चित्र है, किसका किसका चित्र बताया, उस प्रजापिता का भी चित्र बनाया है शास्त्रों में चित्रों में, और प्रजापिता में प्रवेश करने वाला वो जो सुप्रीम सोल है उसका भी चित्र बनाया, शिव का भी चित्र है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है। क्योंकि वो शिव जो निराकार है सृष्टि पर आता है सृष्टि रचने तो वो तीन मूर्तियां धारण करता है, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है, चित्र किस बात की यादगार है, चित्र है चरित्र की यादगार। क्या चित्र काय की यादगार है, चित्र है चरित्र की यादगार। जिसने जिसने जैसा जैसा चरित्र बजाया, जैसा जैसा चरित्र पार्ट बजाया, उस पार्ट की यादगार उनका चित्र दिखा दिए। क्या जैसे राम की आत्मा का चित्र दिखा दिया है, धनुष बाण धारण किए तो जरूर उसने ज्ञान के बाण मारे होंगे, ज्ञान के बाण मार मार करके आसुरी संप्रदाय को संहार किया होगा। जैसे शंकर को विष पीता हुआ दिखाते हैं, ध्यान मग्न स्टेज में दिखाते हैं, सांप काफी बिच्छू चिंदन दिखाते हैं तो जरूर इस शक्ति पर उसने विषय विकार रूपी विष पिए होंगे। जरूर उसने सर्प जैसी जो विकारी मनुष्य आत्माएं हैं वो उसके संपर्क संसर्ग में आकर के चिपक के बैठती होगी, लेकिन वो घबराता नहीं उसे। दूसरी मनुष्य आत्माएं घबराएंगी, पापियों से, अत्याचारियों से, दुराचारियों से संसर्ग संपर्क में आने से घबराती है। देवात्माएं बहुत घबराती है, लेकिन वो किसी से घबराने वाला नहीं है। तो विश्व चिंतन अंगों से चिपके हुए दिखाई जाते हैं। तो ये चरित्र की यादगार है चित्र। विष्णु के चार भुजाएं दिखाई जाती हैं। भुजाओं का मतलब है मददगार, सहयोगी। तो परमात्मा जिसके द्वारा इस नई शक्ति पर आकर जब नई शक्ति रचता है, उस नई शक्ति का जिसके द्वारा पालना कराता है, वो पालना चार मनुष्य आत्माएं मिलकर के करती है। राम की सहयोगिनी शक्ति सीता, कृष्ण की सहयोगी शक्ति राधा, इसमें राम कृष्ण और सीता राधा और जगदम्बा, जगदम्बा ये चार आत्माएं और उनको कंट्रोल करने वाला एक शिवशंकर भोलेनाथ। तो चार भुजाएं हो गई और एक तीसरा नेत्र हो गया। ये पांच आत्माएं हैं, जो पांचों आत्माएं मिलकर के विष्णु का पार्ट बजाती है। विष्णु का पार्ट बजाने वाली जो आत्माएं हैं उनकी यादगार विष्णु दिखा दिए। ब्रह्मा को भी ऐसे ही दिखाया है, चार भुजाएं हैं, चार मुख हैं। कहते हैं ब्रह्मा ने बार बार शक्ति रची, एक बार एक मुख से शक्ति रची, पसंद नहीं आई बिगाड़ दी। दूसरी बार मुख से शक्ति रची, पसंद नहीं आई फिर बिगाड़ दी। फिर तीसरी बार रची, फिर बिगाड़ दी। फिर चौथी बार रची, उसके बाद रचना बंद कर दिया। माना ब्राह्मण तो देवताओं की सृष्टि रची, क्षत्रियों की सृष्टि रची, वैश्यों की सृष्टि रची और सूत्रों की सृष्टि रची डाली। तो ब्रह्मा के मुख भी चार दिखाए हैं, भुजाएं भी दिखाई। तो ये चरित्र की यादगार है क्या चित्र? तो शिव का भी चित्र है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है, परंतु वह क्या पार्ट बजाते हैं? वो ब्रह्मा विष्णु शंकर या शिव या प्रजापिता क्या पार्ट बजाते हैं ये कोई को पता नहीं। उन्हों का नाम क्यों गाया जाता है? ब्रह्मा विष्णु शंकर प्रजापिता या शिव सुप्रीम सोल, उनका नाम क्यों गाया जाता है? नाम जो गाया जाता है उसके पीछे कोई कारण रहा होगा। क्या कहा? जो नाम गाया जाता है उसके पीछे कोई कारण रहा होगा। नाम क्यों गाया जाता है, नाम की इतनी महिमा क्यों है, नाम का कीर्तन करो, नाम का जाप करो। भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, नाम का कीर्तन करो, नाम का जाप करो, भगवान का नाम लो। नाम के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, नाम के पीछे इतना कारण क्या है? नाम जो है वो काम के आधार पर नाम पड़ता है। शास्त्रों में जितने भी नाम हैं, जैसे जैसे जिसने काम किए वैसे वैसे उनके नाम पड़ गए। जैसे जैसे जिसने चरित्र बजाए वैसे वैसे उनके चित्र देखने में आ रहे। राक्षसों के पार्ट बजाए तो राक्षस जैसा चित्र हो गया, बहुत भयंकर देवहान का पार्ट बजाया तो रावण जैसा बड़ा बड़ा रूप दिखा दिया। राम ने आत्मिक स्थिति का पार्ट बजाया तो राम का चित्र छोटा दिखा दिया। दुर्योधन, दुशासन, ये जो नाम पड़े हैं, दुह माने खराब, दुष्ट, योधन माने युद्ध करने वाला, जो दुष्ट युद्ध करता है, दुशासन जो दुष्ट शासन करता है, तो जिन्होंने ऐसा पाठ बजाया उनका नाम दुशासन दुर्योधन है। रावण, राव ऐसे लोकान जो लोगों को रुलाता है उसका नाम रावण रख दिया। रुलाने का भी तो पाठ होता है, कोई का हंसाने का पाठ, कोई का रुलाने का। तो जिसने रुलाया उसका नाम रावण रख दिया। राम, रम्मिते योगिनो यस्मिन, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, जिसकी याद में योगी आत्माएं खेल करती हैं, खेलती हैं, नाचती हैं, कूदती हैं, प्रसन्न होती हैं, जिसकी याद में खुशी में रहती हैं, वो हो गया राम। तो जिसने जैसा काम किया उसका वैसा नाम पड़ा। तो बोला कि ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि चित्र बनाए हैं, नाम दिए हुए हैं, उनका नाम क्यों गाया जाता है, उनके चित्र क्यों बनाए जाते हैं, वो कोई भी जानता नहीं सिवाय तुम बच्चों की। बल बहुत पढ़े लिखे हैं, एमए पास हैं, पीएचडी किए हुए हैं, डीलिट किए हुए हो, डॉक्टर हो, बड़े से बड़े वकील हो, बड़े से बड़े साहित्यकार हो, दुनिया के बड़े नामी ग्रामी क्यों न हो, लेकिन वो इन बातों का जवाब नहीं दे सकते। इन बातों का कि देवताओं के और राक्षसों के जो चित्र बनाए गए हैं वो ऐसे चित्र क्यों बनाए गए, जो उनके ये नाम दिए गए हैं वो उनके ये नाम किस काम के आधार पर दिए गए हैं, वो काम बताओ, तो जवाब नहीं दे पाएंगे। उनका नाम क्यों जाया जाता है, उनका चित्र चरित्र के आधार पर कैसे बनता है, ये कोई नहीं जानते। भले बहुत पढ़े लिखे लिखे लोग हो, लाखों की संख्या लेक्चर सुनने जाती है। क्या आज के बड़े बड़े धर्म के नेताएं, क्या धर्माधीश, विद्वान, आचार्य, शंकराचार्य, उनकी लेक्चर सुनने के लिए कितने लोग जाते हैं, लाखों की तादाद में भीड़ होती है। आसाराम बापू, मुरारी बापू, निराकारी संप्रदाय के कितने बाबा हैं, उनका जब सत्संग होता है तो लाखों की तादाद में लोग सुनने जाते हैं, लाखों की संख्या लेक्चर सुनने जाती है। परंतु तुम बच्चों के आगे जैसे वो कुछ भी नहीं जानते, क्या तुम बच्चे एक तरफ बैठो और वो इतने बड़े बड़े सुनाने वाले लेक्चर देने वाले दूसरी तरफ बैठे, तो तुम्हारी बातों का वो जवाब नहीं दे सकते। तुम्हारे आगे वो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। क्या शिव बाबा इस सृष्टि पर आते हैं तो जो बच्चे गृहस्थी में रह करके गिरिहस्ती इतनी बन जाते हैं कि अपने को बहुत नीचा समझते हैं, जन साधारण मनुष्य जैसे बन जाते हैं, विकारी समझते हैं, अपने को पतित समझते हैं, भगवान की तो बहुत महिमा गाते हैं लेकिन अपने में हीन भावना आ जाती है, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स आ जाता है। ऐसे बच्चों को बाप आकर ऐसा ज्ञान सुनाते हैं कि जिससे वो सुन करके उन बच्चों के अंदर सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स आ जाए कि नहीं, हम दुनिया के मुकाबले भगवान के बच्चे होने के नाते, ईश्वरीय परिवार के बच्चे होने के नाते हम बहुत ऊंचे हैं। राक्षस या कौरव यादव संप्रदाय कितने थे और पांडव कितने थे? पांच पांडव थे और कौरव और यादव संप्रदाय लाखों करोड़ों की तादाद में थे, लेकिन पांच पांडवों में इतना स्टेमिना कैसे आ गया? क्यों उन्होंने सबको जीत लिया? उनके अंदर ये सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स आ गया, ये महत्वाकांक्षा उनकी परमात्मा ने जगाई। अर्जुन तू कायर क्यों बनता है? पहले अध्याय में अर्जुन कायर बनता है ना, कहता मैं नहीं तो लड़ूंगा, मेरे अंदर ताकत नहीं है। तो भगवान उसको गीता ज्ञान सुना करके वो पावर भरते हैं, ज्ञान बल भरते हैं। वो ज्ञान बल जिनमें भर जाता है उनके अंदर ताकत आ जाती है, सारी आसुरी मनुष्य सृष्टि से लड़ने की ताकत आ जाती है। तो बाबा आकर तुमको फिर सख्त बुद्धि बनाते हैं। वो लेक्चर देने वाले तुम्हारे सामने इतने तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं और तुम सख्त बुद्धि बन जाते हो। तुम सब कुछ जानते हो। इस सृष्टि की प्रक्रिया क्या है, ये सृष्टि का कैसे निर्माण होता है, कैसे सृष्टि चलाई जाती है, कैसे सृष्टि का विनाश होता है, तुम इस सृष्टि के रचयिता को जानते हो और इस सृष्टि रूपी रचना की सब बातों को तुम जानते हो, दूसरा कोई नहीं जानता। ऊंच से ऊंच बात है, अब नई रचना रच रहे हैं। क्या वो ऊंच से ऊंच बाप जो ऊंच से ऊंच रचना रच रहे हैं, कौन सी रचना ऊंच से ऊंच? इस सृष्टि पर रूस में रहने वाले नास्तिक भी हैं जिन्होंने एटम बम बना दिए, इतनी नास्तिक बुद्धि है, सृष्टि के विनाश का सामान इकट्ठा कर दिया। कौरव संप्रदाय है, जो कौरव संप्रदाय भारतवर्ष में एक समय राज्य कर रहे हैं। क्या? जो कौरव संप्रदाय भारत में इस समय राज्य कर रहे हैं, कौओं की तरह शोरगुल करते रहते हैं, लेकिन इतना भ्रष्टाचार उनमें भरा हुआ है जैसे कौआ भ्रष्टाचारी होता है ना, गंध खाने वाला, इतना उनकी बुद्धि में गंध भरा हुआ है कि भ्रष्टाचार करने के बाद ऐसे कौरव संप्रदाय उनका भी हुजूम लगा पड़ा है भारतवर्ष में। आर्य समाजियों से तैयार होता है। क्या एक आर्य समाज ही ऐसा धर्म है संसार के अंदर जिसने सारे धर्म वालों को निमंत्रण दे दिया कि कोई भी आकर के आर्य समाजी बन के हिंदू बन जाए? क्या हिंदुओं ने कभी भी जो एक बार दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गया अपने में स्वीकार नहीं किया? हिंदुओं से इस्लामी बन गए, हिंदुओं से मुसलमान बन गए, हिंदुओं से क्रिश्चियन बन गए, हिंदुओं से बौद्धी बन गए, जो बन गए बन गए, उनको कभी भी स्वीकार नहीं किया, अपनी श्रेष्ठता को अपने खून को मेंटेन करके रखा। लेकिन इन आखिरी कलयुग के अंत के 84वें जन्म में 83वें जन्म में ये आर्य समाज एक ऐसा धर्म आता है, मठपंथ आता है, जिसने सब धर्म वालों को निमंत्रण दे दिया, कोई भी आए दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के कोई भी आए और आकर के हमारा समाज में आकर के हिंदू बन जाए। तो सब धर्मों में कन्वर्ट होकर के जो आएगा वो धोखेबाज होगा? उसके धोखेबाजी के अंदर संस्कार भरे हुए होंगे या श्रेष्ठता के संस्कार होंगे? नहीं समझ में आया? धोखेबाजी के संस्कार होंगे। तो ऐसे धोखेबाज भारत के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, अब शासक वर्ग बन करके बैठे हैं, वो पहले अपना पेट भरेंगे उसके बाद पब्लिक को देखेंगे। तो आर्य समाज वो भी एक धर्म मठपंथ संप्रदाय है। रूस के नास्तिकों में से भी शेष आत्माओं को परमात्मा चुनता है, आर्य समाजियों में से श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माओं को चुनता है, सिख धर्म संप्रदाय गुरु नानक 500 साल पहले हुए, सिखों में से जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनको भी चुना, वो भी आके ब्राह्मण बने। इसी तरह मुस्लिम संप्रदाय मोहम्मद जिन्होंने मूर्तियों को तोड़ दिया, उस मोहम्मद मुस्लिम संप्रदाय में भी श्रेष्ठ आत्माएं थी, उन श्रेष्ठ आत्माओं को चुना, वो भी ब्राह्मण बन गए माउंट आबू में पहुंच के। इसी तरह सन्यासी शंकराचार्य, आज से 1500 साल पहले शंकराचार्य ने संन्यास धर्म की स्थापना की, उन सन्यासियों में से भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माओं को परमात्मा ने चुना, वो भी ब्राह्मण बन गए। बौद्धियों में से श्रेष्ठ आत्माओं को चुना, वो भी ब्राह्मण बन गई। तो हर धर्म की चुनी हुई शेष आत्माएं ब्राह्मण बनी है, और जो ओरिजिनल संस्कार वाले थे सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, जो डायरेक्ट ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा से जन्म लेते हैं, वो भी इस ब्राह्मण संप्रदाय में है। माने दुनिया के हर धर्म संप्रदाय से शेष आत्माओं को चुन करके परमात्मा ने ये बड़ा ब्राह्मण परिवार तैयार किया। ईश्वरीय कुटुंब कहो, ईश्वरीय परिवार कहो, वो परिवार तैयार हुआ पड़ा। तो बताया, अब नई रचना रच रही है परमात्मा इस शक्ति पर। नई दुनिया में नई रचना चाहिए ना। पुरानी दुनिया की मनुष्य आत्माओं में से ही चुन करके नई शक्ति तैयार कर रहे हैं मनुष्यों की। तो मनुष्यों की नए संस्कारों वाली नई शक्ति चाहिए ना, चाहिए। तो बताया, नया राज्य भी चाहिए। गांधी जी भी कहते थे, क्या चाहिए? राम राज्य चाहिए। गांधी जी भी कहते थे राम राज्य चाहिए। नई दुनिया चाहिए। भारत ही है जिसमें एक राज्य सत्युग में होता है। भारत में एक ऐसा भी टाइम था जिसमें सारी दुनिया के अंदर एक ही राज्य था। कौन सा राज्य था, कौन सा समय था? सत्ययुग। सत्ययुग में एक सत्य गॉड फादर सुथ जिसे कहा जाता है, उसके द्वारा स्थापन किया हुआ सत्ययुग। सत्ययुग में एक सत्य नारायण का राज्य था। हमारे घर घर में किसकी कथा होती है? सत्यनारायण की कथा होती है। तो सत्यनारायण की कथा हर घर घर में जो यादगार के रूप में गाई जाती है, वो सत्यनारायण की कथा के बारे में कोई नहीं जानता। पंडित जी लकड़हारा, लकड़बंगा, लीलावती, कलावती की कथा सुनाएंगे, उनकी जीवन कहानी सुनाएंगे, लीलावती, कलावती, लकड़हारा की, लेकिन सत्यनारायण की कथा नहीं सुनाते। जानते ही तो सच्ची सत्यनारायण की कथा, जो सत्यनारायण का राज्य स्थापन करने की कथा है, वो परमात्मा बात सत्य पर अभी सुनाए रहा है। वो सतयुग में सत्य धर्म की स्थापना परमात्मा ने आकर के की थी। कब? जब कलयुग का अंत हुआ था। अभी कलयुग का अंत हो चुका है, एटमिक एनर्जी बन चुकी है, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा हुआ है, नई दुनिया की ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की सृष्टि रची जा रही है। अब विष्णु का वो राज्य आने वाला है जिसमें नई दुनिया की पालना विष्णु देवता के द्वारा होगी। देवताओं की पालना करने के लिए कौन चाहिए? देवता चाहिए। तो बोला, नई दुनिया में नया राज्य चाहिए। भारत है जिसमें एक राज्य सत्य होता है, सिर्फ सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। शास्त्र में भी ये बात लिखी हुई है। सत्युग में नारायण का राज्य था। किसका राज्य था? नारायण का। हे कृष्ण नारायण वासुदेव, उसका दूसरा नाम है कृष्ण, उसका दूसरा नाम है वासुदेव। कोई कहेंगे है कृष्ण तो द्वापर युग में हुआ। अरे द्वापर में अगर कृष्ण हुआ होता तो द्वापर के अंत में आकर कौरव पांडवों का युद्ध करा के उसने क्या पापी कलयुग की स्थापना की? भगवान आएगा तो पापी युग की स्थापना करके जाएगा क्या?
कि पुण्यात्मा की दुनिया बनाकर जाएगा। भगवान आता है तो द्वापर के अंत में नहीं आता, वो कब आता है? कलयुग के अंत में और सतयुग के आगे। इसको कहते हैं संगम, दो युगों का संगम, कलयुग का अंत और सतयुग का आदि। अभी परमात्मा बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है, आकर के जो नर से नारायण सत्य नारायण बनने वाले हैं उनकी कथा सुना करके सत्यनारायण का राज्य स्थापन कर रहा है। सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य होता है, फिर त्रेता में चंद्रवंशी राज्य होता है। तो सूर्यवंशी लोप हो जाता है, फिर कहा जाता है चंद्रवंशी राज्य। हाँ, वो जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण हो करके गए, परंतु कहलाएगा राम सीता का राज्य। तो ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं है क्या? परमपिता परमात्मा शिव जिस ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की शक्ति रचते हैं माउंट आबू में, दादा लेसराज ब्रह्मा नाम का कोई व्यक्तित्व हुआ जिसका नाम ब्रह्मा रखा गया, जिस ब्रह्मा के नाम पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय खुल गए, आपके राजा मंदिर में भी खुला हुआ क्या? ब्रह्मा कुमारी विद्यालय। तो वो सब ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में ब्राह्मणों की रचना हो रही है माउंट आबू से लेकर के, लेकिन ब्रह्मा क्रिएटर नहीं है क्या? क्रिएटर नहीं है, रचयिता नहीं है। ब्रह्मा भी रचना है, जैसे अपने घर परिवार में माँ रचना होती है या बाप रचना रचयिता होता है। बाप रचयिता होता है, माँ रचना होती है। बाप जो है वो नारी को एडॉप्ट करता है, जैसे बच्चा एडॉप्ट किया जाता है, तो बच्चा रचना हुई और एडॉप्ट करने वाला बाप रचयिता हुआ। तो उसी तरीके से परमात्मा शिव शक्ति पर जब आता है तो प्रजापिता जिसमें पहले प्रवेश करता है उस प्रजापिता के द्वारा ब्रह्मा को भी एडॉप्ट करता है। ब्रह्मा माने ब्रह्मा, ब्रह्मा माने बड़ी से बड़ी शक्ति की माँ। इस शक्ति रूप में मनुष्य शक्ति में वो माँ का ऐसा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली आत्मा है, जितना ऊंचा श्रेष्ठ पाठ दुनिया में और किसी ने नहीं बजाया। कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों से जाके माउंट आबू तक पूछ लीजिए, उनसे पूछिए कि तुमको इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किसने दिया, तो कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी ये नहीं कहेगा कि हमको लौकिक परिवार वालों ने प्यार दिया, हमारे लौकिक संबंधियों ने हमें प्यार दिया। वो कहेंगे ब्रह्मा बाबा ने जितना हमको प्यार दिया उतना दुनिया में किसी ने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसका नाम ही पड़ा है। क्या नाम पड़ा है? ब्रह्मा। तो जरूर उसने ऐसा काम किया है जो दुनिया में किसी माता ने ऐसा पार्ट प्यार का नहीं बजाया। इसका प्रूफ है